रसूलों के अमाल बाब 22। भाइयों और बुजुर्गों, मेरी बात सुने कि मैं अपने दफा में कुछ बताऊं। जब उन्होंने सुना कि वो अरामी जुबान में बोल रहा है तो वो मजीद खामोश हो गए। पौलुस ने अपनी बात जारी रखी, मैं यहूदी हूं और किलिकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ, लेकिन मैंने इसी शहर यरूशलेम में परवरिश पाई और जमलियल के जेरे निगरानी तालीम हासिल की। उन्होंने मुझे तफसील और एहतियात से हमारे बाप दादा की शरीयत सिखाई। उस वक्त मैं भी आपकी तरह अल्लाह के लिए सरगर्म था, इसलिए मैंने इस नई राह के पैरोकारों का पीछा किया और मर्दों और खवातीन को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया, यहां तक के मरवा भी दिया। इमाम आजम और यहूदी अदालत आलिया के मेंबरान इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। उन्हीं से मुझे दमिश्क में रहने वाले यहूदी भाइयों के लिए सिफारिशी खत मिल गए ताकि मैं वहां भी जाकर इस नए फिरके के लोगों को गिरफ्तार करके सजा देने के लिए यरूशलेम लाऊं। मैं इस मकसद के लिए दमिश्क के करीब पहुंच गया था कि अचानक आसमान की तरफ से एक तेज रोशनी मेरे गिर्द चमकी। मैं जमीन पर गिर पड़ा तो एक आवाज सुनाई दी, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने पूछा, खुदावन आप कौन हैं? आवाज ने जवाब दिया, मैं ईसा नासरी हूं जिसे तू सताता है। मेरे हमसफरों ने रोशनी को तो देखा लेकिन मुझसे मुखातब होने वाले की आवाज न सुनी। मैंने पूछा, खुदावन मैं क्या करूं? खुदावन ने जवाब दिया, उठकर दमिश्क में जा, वहां तुझे वो सारा काम बताया जाएगा जो अल्लाह तेरे जिम्मे लगाने का इरादा रखता है। रोशनी की तेजी ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क ले गए। वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम हनन्याह था। वो शरीयत का कट्टर पैरोकार था और वहां के रहने वाले यहूदियों में नेक नाम। वो आया और मेरे पास खड़े होकर कहा, साउल भाई दोबारा बीना हो जाए। इस लम्हे मैं उसे देख सका। फिर उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने आपको इस मकसद के लिए चुन लिया है कि आप उसकी मर्जी जानकर उसके रास्त खादिम को देखें और उसके अपने मुंह से उसकी आवाज सुने। जो कुछ आपने देख और सुन लिया है उसकी गवाही आप तमाम लोगों को दें। चुनांचे आप क्यों देर कर रहे हैं? उठें और उसके नाम में बपतिस्मा लें ताकि आपके गुनाह धुल जाएं। जब मैं यरूशलेम वापस आया तो मैं एक दिन बैतुल मकद्दस में गया। वहां दुआ करते करते मैं वज्द की हालत में आ गया और खुदावंद को देखा। उसने फरमाया, जल्दी कर, यरूशलेम को फौरन छोड़ दे, क्योंकि लोग मेरे बारे में तेरी गवाही को कबूल नहीं करेंगे। मैंने एतराज किया, अय खुदावंद वो तो जानते हैं कि मैंने जगह ब जगह इबादत खाने में जाकर तुझ पर ईमान रखने वालों को गिरफ्तार किया और उनकी पिटाई करवाई, और उस वक्त भी जब तेरे शहीद स्तिफनुस को कत्ल किया जा रहा था मैं साथ खड़ा था। मैं राजी था और उन लोगों के कपड़ों की निगरानी कर रहा था जो उसे संसार कर रहे थे। लेकिन खुदावन ने कहा, जा, क्योंकि मैं तुझे दूर दराज इलाकों में गैर यहूदियों के पास भेज दूंगा। यहां तक हुजूम पौलुस की बातें सुनता रहा, लेकिन अब वो चिल्ला उठे, इसे हटा दो, इसे जान से मार दो, ये जिंदा रहने के लायक नहीं। वो चीखें मार मार कर अपनी चादरें उतारने और हवा में गर्द उड़ाने लगे। इस पर कमांडर ने हुक्म दिया कि पौलुस को किले में ले जाया जाए और कोड़े लगाकर उसकी पूछ गुछ की जाए, क्योंकि वो मालूम करना चाहता था कि लोग किस वजह से पौलुस के खिलाफ यूं चीखे मार रहे हैं। जब वो उसे कोड़े लगाने के लिए लेकर जा रहे थे तो पौलुस ने साथ खड़े अफसर से कहा, क्या आपके लिए जायज है कि एक रूमी शहरी को कोड़े लगवाएं और वो भी अदालत में पेश किए बगैर? अफसर ने जब ये सुना तो कमांडर के पास जाकर उसे इत्तला दी, आप क्या करने को हैं? ये आदमी तो रूमी शहरी है। कमांडर पौलुस के पास आया और पूछा, मुझे सही बताएं, क्या आप रोमी शहरी हैं? पौलुस ने जवाब दिया, जी हाँ। कमांडर ने कहा, मैं तो बड़ी रकम देकर शहरी बना हूँ। पौलुस ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो पैदाइशी शहरी हूँ। ये सुनते ही वो फौजी जो उसकी पूछगूछ करने को थे पीछे हट गए। कमांडर खुद घबरा गया कि मैंने एक रूमी शहरी को जंजीरों में जकड़ रखा है। अगले दिन कमांडर साफ मालूम करना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए उसने रहनुमा इमामों और यहूदी अदालत आलिया के तमाम मेम्बरान का इजलास मुनाकिद करने का हुक्म दिया। फिर पौलुस को आजाद करके किले से नीचे लाया और उनके सामने खड़ा किया।